तक इस संसार में मेरी कथा कही जाएगी तब तक आप लोगों को मेरी कथा के अंदर जरूर याद किया जाएगा और उस कथा के द्वारा लोगों का निश्चित कल्याण होगा। ऐसी बातें हो रही थी, इधर लंका में से बहुत सी स्त्रियां आई और रावण के लिए विलाप करती करती रावण के पास में आकर खड़ी हो गई। मंदोदरी जी उनमें मुख्य थी, वे रावण के शरीर के ऊपर मूर्छित होकर के गिर गई और वो बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी कि हमने आपको कितना मना किया था, कितनी कितनी बात कही, आप ऐसा द्वेष क्यों करते हैं, फिर भी आप युद्ध के लिए तैयारी हो गए। ऐसे करके बहुत इन्होंने विलाप किया। रावण के मरने पर विभीषण के मन में भी बड़ी पीड़ा हुई कि देखो अब मेरे कोई भाई नहीं रहे, बहुत शोक के अंदर डूब गया, वो भी रावण के सामने गिर गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ विभीषण को समझाओ। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने आकर के और विभीषण जी से कहा, विभीषण जी, हाँ राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इसको विभीषण को समझाओ और इसको कहो कि अब इसका अंतिम संस्कार करो। देखो आजकल एक प्रथा चल पड़ी है कि शरीर को बहुत दिनों तक रखा जाता है, बहुत समय तक रखा जाता है, वो आएगा। पुत्र की प्रतीक्षा तो होती है, बाकी और किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी संस्कार हो जाता है उतना ही उस प्राणी को सुख मिलता है। पुत्र नया है तो पुत्र के लिए तो दशरथ जी को भी रखना पड़ा, लेकिन बाकी यदि कोई है, अब यहां तो कोई पुत्र तो अब रावण का रहा नहीं, अब तो एक विभीषण ही रहा। भगवान ने कहा कि उसके अंतिम संस्कार में विलंब मत करो और विभीषण को कहो कि मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं इन सब रानियों को समझावे और इनको लंका के अंदर भेज देवे। राम जी के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मण जी विभीषण जी के पास आए और रावण के शव के पास विलाप करने वाले विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने जो है समझाना चालू किया। विभीषण जी, किसके लिए शोक करते हो? ऐसी कौन सी चीज थी कि जो इसमें से चली गई, किसके लिए शोक करते हो? ये शरीर के लिए करो तो शरीर तो ये आगे पड़ा है, शरीर तो कहीं गया नहीं। और आत्मा के लिए शोक करते हो तो आत्मा तो तुम्हारे अंदर भी वही है, इस मृत शरीर में भी आत्मा वैसी है, आत्मा थोड़े ही निकलती है शरीर से। सज्जनों, हम लोग देखते हैं इसमें से आत्मा घुसती है और आत्मा निकलती है। आत्मा यदि शरीर के अंदर से निकलती हो तो आत्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकती, आत्मा कहीं नहीं निकलती है। आत्मा मुर्दे में भी वैसी है, आत्मा तो चिता में भी वैसी है, आत्मा हड्डियों में भी वैसी है, आत्मा वैसी की वैसी रहती है। निकलता है इसका प्राण, निकलता है प्राणों के अंदर रहने वाला इंद्रियों का समुदाय और इंद्रियों के समुदाय के अंदर रहता है कर्म फल और कर्म संस्कार और अज्ञान वृत्ति, ये अंदर से निकलती है। आत्मा नहीं निकलता, पर यह है कि इसमें से प्राण और इंद्रियां निकलती है ना, तो आत्मा इनके साथ संबंध रखता है, बस संबंध रखता है। जहां जहां ये जाते हैं आत्मा तो व्यापक है, वहां इसके साथ चिपका रहता है। देखो एक कीड़ी है, वो हमारे यहां से यहां यहां घूमती रहती है, तो दिखने में क्या आएगा कि मेरे हाथ में तो कीड़ी है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहां ही जाए वो तो हमारे हाथ पर ही घूमती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अंदर से निकलते हैं तो ये आत्मा के अंदर ही घूमते हैं, तो आत्मा साए जहां उसका संबंध कर लेता है, जिस योनि में भी जाता है वो शरीर उसमें संबंध कर लेता है। संबंध वहां जाके नहीं करता है, आत्मा व्यापक है, सारे शरीर आत्मा के अंतर्गत है, अतएव आत्मा जहां भी वो रहता है वहां चिपक जाता है। ये है खास बात। तो देखो विभीषण, जिसके लिए तुम शोक करते हो तुम्हारे क्या लगता है बताओ? कोवा अस्य कतमः ये तुम्हारे क्या लगता था और तुम इसके क्या लगते हो, कि तुम यदि कहोगे कि मेरा भाई है तो भाई कौन है ये तो सोचो। शरीर भाई है कि आत्मा भाई है, कौन है भाई? भाई है कौन? अरे ये तो एक नदी का प्रवाह है जिसमें मिट्टी के कण एक साथ आते हैं, यूं यूं मिल जाते हैं और फिर ये यूं बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही सब प्राणी आए हैं और काले न व्युज्यन्ते, और समय के अनुसार ये उपयोग किया, समय के अनुसार ये आगे चले गए। काल ने दोनों को मिलाया और काल ने दोनों को अलग कर दिया। हर्ष और शोक करने की क्या बात हुई? जैसे जमीन में से धान पैदा हुआ और वो धान पैदा होकर के नष्ट हो गया और उसके बीज से दूसरा धान पैदा हो गया, ऐसे ही शरीरों से शरीर पैदा हो गए। अब बताओ, तुम और हम और सब शरीरों से ही पैदा हुए हैं ना? वो शरीर जो है चले जाते हैं, अपने पैदा करने वाले शरीर चले गए तो पैदा होने वाला शरीर कैसे रहेगा? विभीषण वो भी चला जाएगा, क्योंकि शरीर का तो धर्म है, जन्म इसका धर्म है तो मृत्यु भी इसका धर्म है। ये तो इस शरीर का धर्म है, वो धर्म पूरा हुआ है, शोक क्यों करते हो? भगवान प्राणियों से प्राणी पैदा करते हैं और अस्वतंत्र प्राणियों से प्राणी पैदा होते हैं, और स्वयं भगवान इन प्राणियों को खेल के लिए बनाते हैं, तो भगवान का खेल है। भगवान के खेल में हम क्यों नाराज हों? एक देह है, एक देह ही है, ये केवल हमारी कल्पना है। देह माने शरीर, देही माने आत्मा, ये केवल हमारी कल्पना मात्र है। इसलिए न देही है न देह है, देही देह का विभाग बिल्कुल झूठा है। जिस प्रकार अग्नि के अंदर लकड़ी के कई रूप दिखते हैं, देखो लकड़ी इतनी बड़ी दिखती है, आग लग गई तो आग लगने के बाद लकड़ी इतनी जल गई तो लकड़ी छोटी दिखती है। आग के अंदर आने, आग लग जाने पर ये लकड़ी के अनेक विकार सामने आते हैं, ऐसे ही आत्मा के सामने शरीर की अनेक अवस्थाएं सामने आती है। जन्म होता है, नाश होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है। तो जैसे आग के अंदर लकड़ी जलती है, आग नहीं जलती, ऐसे ही शरीर है, ये आत्मा नहीं मरता, ये आत्मा के अंदर ही शरीर पैदा होता और मरता है। इस प्रकार से शरीर आदियों का जो संयोग है, ये हमको सच्चा क्यों मालूम देता है कि शरीर आदि पर हमारी दृष्टि रही और वो आत्मा से मिली हुई है, अतएव हमको जो है वहां शरीर आदि की सत्यता दिखती है। यदि सत्य आत्मा पर हमारा विचार हो जाए तो फिर ये संसार हमको असत्य मालूम देगा। तुम ही विचार करो विभीषण, जब गहरी नींद आई रहती है उस समय ये संसार दिखता है क्या? कुछ अपना भी भान होता है क्या? मैं पड़ा हूं बेस, कुछ पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उस समय में शरीर में मैंपना नहीं है। तो उस समय बताओ कोई दुख होता है क्या? आज तक किसी आदमी ने कहा क्या कि मैं गहरी नींद में बहुत दुख पाया? किसी भी आदमी ने कहा, किसी भी प्राणी ने अनुभव किया? स्वप्न का दुख बता देगा कि स्वप्न में ऐसे आया, ऐसे सिंह आया, ऐसे भार लगा, मैं तो घबरा गया। जागृत के दुख तो भोगते ही है, तो जागृत के दुख है और स्वप्न के दुख है, पर गहरी नींद का भी कोई दुख होता है क्या? क्यों नहीं होता? कि उस समय में देहादि से अपना संबंध नहीं रहता, परंतु वो ज्ञान पूर्वक संबंध का अभाव नहीं हुआ, अतएव निद्रा अवस्था के बाद वापिस हमारे दुख होता है, क्योंकि वो संबंध ज्ञान से अलग नहीं हुआ, ज्ञान से संबंध विच्छेद नहीं किया, तमोगुण के द्वारा उस संबंध की स्मृति नहीं रही। अब देखो, संबंध की स्मृति न रहने में भी बड़ा सुख मिलता है। कितनी भयंकर बीमारी हो, कितनी पीड़ा हो, डॉक्टर यही कहता है कि गहरी नींद के अंदर इसको, डॉक्टर कहे चाहे कोई कहे, गहरी नींद में उसको कोई दुख नहीं होता है। और डॉक्टर उसको दवाई दे करके गहरी नींद ही देता है, मूर्छित ही करता है। क्यों? क्यों करता है कि इसको शरीर के साथ मैंपन का बोध न रहे। खास बात तो यह है, हमने सुना कि एक कोई पहुंचवान पुरुष थे, उन्होंने कहा कोई यहां हड्डी का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने कहा कि बेहोश करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा नहीं, फिर तो आप जो है ऑपरेशन के समय में कहीं ना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो करना है बिना बेहोश कर दीजिए। तो यहां डॉक्टर से चीरा लगा, हम लिखा पढ़ी कर दें आपके लिए। उस जमाने की बात है, तो वह यहां कोई ऑपरेशन था तो उन्हें कोई सूंघनी नहीं सूंघी। उस समय शून्य करने का जो नहीं था कि यहां से सुना कर दें, वो भी साधन नहीं था, सूंघनी का ही साधन था, सूंघा देते बेहोश हो जाता। परंतु यहां ऐसा नहीं। अब जो है फिर जो है वो ऐसे ही बैठे रहे, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। कहा कि आपको कुछ ज्ञान हुआ क्या? क्या नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला। ऑपरेशन हो गया क्या? क्या हाँ हो गया। आप तो कह रहे थे बड़ी भयंकर पीड़ा होगी, ये हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर भी मान गए, ये क्या बात है भाई। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सबके ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है। सेठ जी के पास जब ये बात आई तो सेठ जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति नहीं मानते हम। है सेठ जी की बात वही जाने, महापुरुषों की बात वही जाने। संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। कितनी बढ़िया बात लक्ष्मण जी ने कहा। गहरी नींद में संसार देहादि के साथ जो हमारा संबंध है वो भूलते हैं, तमोगुण में उसमें भी इतना आनंद है। जब यदि ज्ञान पूर्वक के संबंध को हम नष्ट ही कर दें तो कितना आनंद आ सकता है। इसलिए इस ज्ञान पूर्वक नष्ट करने का उपाय कि भगवान रामचंद्र के अंदर अपने अपने मन आदि को लगा देना चाहिए। तस्मात मनो माया मनोधर्मम रामचंद्रे अधेही, उसके अंदर रख दो ये अपने। बाह्य इंद्रियों से, बाह्य वृत्तियों से अपने मन को हटाओ और आत्मा तक उसको ले जाने की कोशिश करो। कैसे? कि दोषान दर्शयित्वा, बाहर के विषय भोगों के दोषों का खूब चिंतन करो। कहते हैं भगवान का चिंतन करते हैं तो मन संसार में भागता है। अरे भगाओ, हमारे रामायण कहती भगाओ। कहां जाता है? जहां आपने सुख लिया है वहां जाता है, तो उसमें दुख दिखाओ। जहां सुख लिया वहां दुख दिखाना चालू करो। सर्वभूतात्मनि परे माया मानुष रूपिणी बाह्य इंद्रियार्थ संबंध्या त्याजयित्वा मनश्शनैः, दोषान दर्शयित्वा, दोष दिखाओ। जब शरीर के अंदर आपका मन होगा तभी आपको कुटुंब सब प्रिय लगेगा, और जब अपनी आत्मा की विलक्षणता पहचान लोगे तब कुटुंब के साथ एक साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। कौन किसका भाई, कौन किसकी माँ, कौन किसके पिता, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पुत्र, कोई संबंध नहीं रहेगा। ये सब मिथ्या अज्ञान से जोड़े हुए संबंध हैं। और जब ये अपने शरीर के साथ ही संबंध नहीं है तो फिर विभीषण, लंका का राज्य हुआ तो क्या, और वैभव हुआ तो क्या, और ये सब आदर सत्कार हुआ तो क्या, ये क्या है? बलम कोश है, भृत्य वर्ग है, राज्यम भूमि सुतादय है, अज्ञान जत्वात सर्वेते, ये सब अज्ञान से तो प्रतीत होते हैं। इनके अंदर नाशवत्ता देखना चालू करो, सब नाशवान है और मेरे से असंबद्ध है। उठो और ऐसा भीतर में ज्ञान रखते हुए आप जो है राज्य का संचालन करो। देखो भयंकर गर्मी पड़ती है ना, तब आदमी क्या करता है, ठंडी चीज पी करके और फिर वो जाता है, मट्ठर है, लस्सी है, मौसमी का रस है, जूस है, ये पी करके फिर भयंकर गर्मी में जाता है। उसको गर्मी का असर नहीं होता। क्यों होगा भाई? गर्मी का असर क्यों होगा? उसने ठंडी चीज अंदर ले रखी है, ऊपर गर्मी है तो है, अंदर हमने ठंडी चीज ले रखी है। हमने सुना है कि पुराने जमाने में गांव के लोग थे, वो गर्मी के दिनों में घी ज्यादा खाते थे। उल्टी बात लगेगी आपको, वो लोग सर्दी में वो के गांव गर्मी में ज्यादा घी खाते, चूरमा वगैरह खूब बढ़िया करके खूब घी मिला करके फिर उसको खाते थे। ये क्यों? तो वो बताया कि हम लोग इसलिए चूरमा करके खाते घी में ज्यादा कि बाहर गर्मी पड़ती, घी की तासीर ठंडी रहती है, हमारे शरीर में तरावट रहती थी घी से, इसलिए गर्मी में हम ज्यादा घी खाते, सर्दी में नहीं खाते इतना। अस्तु, तो अंदर यदि ज्ञान है, ज्ञान की प्रदीप्ति है, ज्ञान का प्रकाश है, तो फिर आप इस राज्य आदि के अंदर बैठे रहो, कोई उसके फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान की भक्ति यदि अंदर है तो बाहर से राज्य का शासन करो, सब संभालो, करो, अधिकार लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो भाई सज्जनों, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी सुंदर बात, दुर्लभ बात बोल रहे हैं कि भूतम भविष्यत अभजन, जो भूतकाल है उसकी चिंता छोड़ो और भविष्य में क्या होगा इसकी भी चिंता छोड़ो। क्या करो? वर्तमानम भजस्व, वर्तमान का तुम आदर करो। वर्तमान है, ये जो वर्तमान है अभी हम क्या कर रहे हैं ये देखो, पीछे क्या हमने किया और किसने हमारे साथ क्या किया भूल जाओ। जो आदमी वर्तमान का आदर करेगा उसका भूत भविष्य सब ठीक हो जाएगा। और देखो सज्जनों, हम लोगों को क्या है कि वर्तमान का दुख इतना दुखी नहीं करता जितना हम कल्पनाओं में दुखी होते हैं, भविष्य दुख के लिए दुखी होते हैं, भविष्य दुख के लिए आगे क्या होगा और क्या होगा। कहते हैं भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान को सुधारो, न्यायपूर्वक रहो, फिर तुम संसार के दोषों से लिप्त नहीं होंगे। और भगवान राम ने आज्ञा दी है, विभीषण जी आप अपने भाई का अंतिम संस्कार शास्त्र की रीति से स्वयं करो, और जो ये माताएं रो रही हैं इन सब को तुम यहां से विदा करो, और लंका में इनका बहुत सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार करो। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के विभीषण जी महाराज शोक मोह का त्याग करके और राम जी के पास में आए। विभीषण जी आकर के और बहुत जोर जोर से रोने लगे, महाराज मैं इस नृशंस झूठे क्रूर और सीता की चोरी करने वाले का स्पर्श भी करना नहीं चाहता, मैं इसका अंतिम संस्कार क्यों करूं, ये महान पापी था, सीता जी को जबरदस्ती उठा लाया, आपके मन में इतनी वेदना पैदा की, मैं इस रावण का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। राम जी ने कहा देखो विभीषण, आदमी का मरने के बाद भी यदि बैर रहता है वो आदमी मनुष्य नहीं है, मरने के बाद तो बैर रहना ही नहीं चाहिए। मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम, मरने तक बैर तो हुआ तो जीते जी हो गया सो हो गया, मरने के बाद उसका बैर भी मर गया है, वो अकेला थोड़ी मरा है। जिस आदमी के साथ आपकी अनबन होती है वो आदमी मर गया तो उसके साथ हमारा अनबन भी समाप्त तो हो गया, उसके साथ हमारा द्वेष भाव भी उसकी चिता में जला देना चाहिए। मरने के बाद भी यदि कोई बैर को याद रखता है तो वो वास्तव में महान नीच पुरुष माना जाता है। मरने के बाद नहीं, तुम इसका अंतिम संस्कार करो, और देखो जैसे तुम्हारा भाई है ऐसे मेरा भाई है, मेरा भाई समझ के इसका अंतिम संस्कार करो। ममा पेश है यथा तव, क्या उदारता की बात भगवान बोलते हैं। ये भगवान किसको सुना रहे हैं सज्जनों? दिखने में तो विभीषण को सुना रहे हैं, काम किसके आएगी बात? अपने लोगों के आएगी। अपने को ऐसा ही होना चाहिए। राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विभीषण जी महाराज फिर वहां मंदोदरी के पास गए और उनको सांत्वना के वचन सुनाए। परम बुद्धिमान विभीषण जी महाराज ने फिर धर्म के अनुसार उनके अंतिम संस्कार के लिए चिता बनाई और पितृमेद विधान के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद फिर वो भाई बंधु मंत्रियों के साथ में आए और उन जो वस्त्र थे उन वस्त्र सहित स्नान किया और फिर जो है खूब दान वगैरह भी दिया। सबको दान मान से सम्मानित करने के बाद और फिर जो है विभीषण जी महाराज जो है राम जी के पास आए। राम जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। रामोपी, राम जी के साथ में सेना भी है, सुग्रीव भी है, लक्ष्मण जी भी है, सब वहां है। उस समय में राम जी महाराज बड़े आनंद में विराजमान थे। तो मातलिश्च तदा रामम, मातली ने राम रमातलिश्च तदा रामम परिक्रम्या भी वंद्य च, राम जी की परिक्रमा की और जो है हाथ जोड़े तो राम जी ने उनको कहा कि अब तुम स्वर्ग में चले जाओ। वो अपने स्वर्ग में चला गया। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैंने लंका का राज्य पहले वहां समुद्र के किनारे दे दिया था, अब मेरी आज्ञा से जाकर तुम लंका के अंदर सिंहासन पर बैठा कर इनका अभिषेक कर दो। राज्याभिषेक दो चीज होती है ना, राज्य तो मैंने दे दिया और अभिषेक अब तुम करिया हो जाओ। अभिषेच है विप्रश्च, ब्राह्मणों के साथ मिलकर के विधि पूर्वक तुम इसका अभिषेक कर दो। बंदरों के साथ लक्ष्मण जी गए और स्वर्ण कलशों में दिव्य रथ दिव्य जल लेकर के आए। खूब बढ़िया अभिषेक किया गया और नगर के श्रेष्ठ श्रेष्ठ राक्षस लोग आए, विभीषण को राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर विभीषण जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ ही राम जी के पास आए। राम जी के पास आकर के और जो है भगवान को प्रणाम करके और कहने लगे, महाराज ये सब राज्य वगैरह आप ही का है, मेरा नहीं है। राम जी ने कहा कि देखो तुम्हारी सहाय ने त्वया वीर, मैंने तुम्हारी सहायता से रावण को मारा है। विभीषणोपि लंकायाम, और सुग्रीव से कहा कि देखो सुग्रीव तुम्हारी सहायता से हमने आज विभीषण को राज्य लंका का राज्याभिषेक करवा दिया है, अपना काम लंका में पूरा हो गया। अब हनुमान तुम्हारा काम है, तुम जाओ लेकिन सीधा लंका में मत जाना। अब लंका विभीषण की हो गई है, इसलिए विभीषण की अनुमति हो तो लंका में प्रवेश करना, इनकी अनुमति लेकर के रावण के महल में जाना, और इनकी अनुमति हो तो अशोक वाटिका में जाना, और वहां जाकर के सब समाचार सीता जी को तुम सुना दीजिए। जानक्या प्रतिवाक्यम में, और सीता जी वापिस क्या बोलती है, एक एक वाक्य तुम आकर हमको सुना देना। तुम जाकर के रावण का वध वगैरह जो हुआ वो सुना दो और जानकी का एक एक वाक्य आकर हमको सुना दो। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए तो वे राक्षस बहुत डरे, चिल्लाए, कहने लगे, अरे बाबा अब तो हमको मत मारना भाई, अब वो तो रावण था इसलिए हम क्या करें अब। अरे नहीं नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हनुमान जी महाराज सबको आश्वस्त कर रहे थे और सीधे वहां अशोक वाटिका में गए, शिंसुपा वृक्ष के नीचे गए। वहां पर सीता जी थी, उनको किसी समाचार का कोई ज्ञान ही नहीं था, राक्षसियां चारों तरफ से घेरी हुई थी। सीता जी वो बैठी राम जी का ही ध्यान कर रही थी विनयावनत हो करके, और उस समय हनुमान जी महाराज ने सीता माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े भक्ति भाव से उनके सामने खड़े हो गए। और सीता जी ने आंख खोल करके देखा कि अच्छा वो ही हमारा राम जी का दूत हनुमान आ गया है। हनुमान जी ने कहा, हाँ माता जी, इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अब जो है रावण मारा गया है, और हे देवी सुग्रीव के साथ विभीषण की सहायता से सब बंदर भी कुशल पूर्वक हैं, राम जी भी कुशल पूर्वक हैं, लक्ष्मण जी के साथ सेना के साथ जो है राम जी ने बड़ा पराक्रम दिखाया, और रावण अपने सेना अपने पुत्र अपने भाई मंत्री सबके साथ मारा गया है, और राम जी महाराज ने अपना कुशल क्षेम आपको सुनाने के लिए मुझे भेजा है। विभीषण को यहाँ पर राज्य भी मिल गया है, आपको त्रिजटा जी ने जो सपना सुनाया था वो सपना पूरा सत्य हो गया है। अपने पति की ये बातें सुनकर के, विजय की बात सुनकर के सीता जी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि बेटा क्या करूं, मैं तुम्हें क्या देऊं, त्रिलोकी के अंदर मुझे कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं दिखती है कि जो मैं तुम्हें ऐसी खुशी के अवसर पर तुमको देऊं। क्या सुंदर तुम्हारे वाक्य निकले हैं, मैं सोच ही नहीं सकती थी ऐसा भी कभी कोई दिन आएगा। ऐसा कोई रत्न नहीं, ऐसा कोई आभूषण नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसको मैं इस समाचार के बराबर समझती हूं। क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो बड़ी दरिद्री हो गई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जी, आप मुझे कितना ही बड़ा रत्न दे दो, आप मुझे देवराज इंद्र का राज्य भी दे दो, तो भी राम जी की जो वीर मूर्ति है, विजयी मूर्ति है, और राम जी की जो अचल रूप है, दिव्य रूप है, उस रूप दर्शन के समान कोई संसार में ऐसी चीज नहीं है। ऐसा सुंदर राम का रूप मैंने दर्शन किया है, विजयी राम के मैंने दर्शन किए हैं, इसलिए अब कोई दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं रही। सीता जी ने कहा, देखो हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि मेरे जानकारी में जितने दिव्य गुण है, सौम्य गुण है, सारे के सारे गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए। अब ऐसा उपाय करो कि जिससे राम के मुझे दर्शन हो जाए, मैं राम जी के दर्शन करना चाहती हूं, राम जी मुझे आज्ञा दें, मैं उनके दर्शन करूं। बहुत वर्ष हो गए उनके जो है दर्शन किए बिना। हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए और निवेदन किया कि महाराज, आपने जिस निमित्त ये कार्य प्रारंभ किया था और उसका जो अंतिम फल है वो सीता ही तो है, उस शोक संतप्त सीता को जो है आप अपने दर्शन दीजिए महाराज, और सीता आपके दर्शन करना चाहती है। जब हनुमान जी महाराज ने ये बात कही, तब रामो ज्ञानवतांबर है, तब राम जी ने मन में सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, मैं मायामयी सीता को छोड़ करके गया था और अब ये मायामयी सीता मेरे पास आएगी, तो अब मेरा ही काम होगा कि मैं सीता को वापिस अग्नि के अंदर सुपुर्द कर दूं और असली सीता को प्राप्त करूं। लेकिन सीधा सीधा यदि मैं दुनिया को कहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए ये काम तो मुझे लंका में ही करना है, इसके अलावा दूसरी जगह कोई बैठेगी भी नहीं, उचित जगह बैठेगी भी नहीं। अब सीता को, अग्नि वाली सीता को प्राप्त कर लेना चाहिए, मेरे अवतार का सब काम पूरा हो गया। मन में सब विचार करके राम जी ने विभीषण जी से कहा, विभीषण, आपके राज्य में जनक नंदिनी सीता है, उसको आप मेरे पास आने का प्रबंध कीजिए, स्नान वगैरह करके, अच्छे वस्त्र पहन करके, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके आप हमारे यहां भेज दीजिए। विभीषण जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा है। हनुमान जी को साथ में ले गए, अशोक वाटिका में गए, वहां पर बड़ी बूढ़ी जो राक्षसियां थी, उन सब राक्षसियों ने सीता जी को बड़े सम्मान के साथ स्नान करवाया, सीता जी को आभूषण पहनाए और बड़े अच्छे वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद उनको पालकी में विराजमान कर दिया। उस पालकी को ढोने वाले बड़े अच्छे अच्छे जो है लोग थे, वे उस पालकी को कंधे पर लेकर के चले। चारों तरफ से सीता जी की बड़ी रक्षा हो रही थी। अशोक वाटिका से वो पालकी लेकर के जब राम जी के वहां पर पहुंची है, तब बंदरों के मन में बड़ा देखने का कौतूहल जगा। वो बंदर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चढ़ गए, यूं झुंड का झुंड जो है देखने के लिए लालायित हुआ। तो वहां पर बहुत से डंडा लिए हुए बंदरों को मार रहे, अरे हटो हटो हटो, सीता जी आ रही, हटो हटो, ऐसा कोलाहल हुआ। तो राम जी के पास में समाचार गया तो राम जी ने दूर से ही कहा, अरे विभीषण, ऐसा क्यों करते हो, ये बंदर अपनी माँ के दर्शन करना चाहते हैं, पालकी से नीचे उतारो, सबके बीच में दर्शन होना चाहिए। पश्यंतु बांदरा सर्वे मैथिली मातरम यथा, ये बच्चे अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, वो खुले आने दो सीता जी को। तो सीता जी वहां पर पैदल पैदल आने लगी। सब बंदर सीता जी के दर्शन करते हैं, वो बंदर तो बंदर है, कोई यूं देखे है, कोई यूं देखे है, कोई कैसे देखे है यूं। सीता जी भी बड़े प्रसन्नता से बंदरों से मिलती है और वो राम जी के पास आई। बड़े प्रेम से राम जी को उन्होंने प्रणाम किया। रामोपि दृष्ट्वा ताम माया सीताम, भगवान ने देखा मायामयी सीता है, इसलिए इस मायामयी सीता को माया से रहित करना है। तो माया से रहित करने के लिए भगवान ने उस मायामयी सीता को मायामय वचन सुनाए, मायामय वचन सुनाए, बहुत कठोर वचन सुनाए। उन कठोर वचनों का जिक्र यहां नहीं हो रहा है, उन कठोरमय वचनों को यहां नहीं बताया गया, वाल्मीकि रामायण में बताया है। ए सीते, मैंने तुम्हारी प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं किया है, मैंने मेरे आत्म गौरव के लिए युद्ध किया है। तुम इतने दिन तक यहां रही हो, तुम किसी के साथ जा सकती हो, ऐसे ऐसे वचन सुनाए, ऐसे वचन सुनाए अमृष्यमाणा। सीता जी को वो सहन नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे वचन क्यों सुनाए, वो अब पूछते हैं उनसे किसको सुनाए, कि मायामयी सीता को सुनाए। तो भगवान ये सुनाना चाहते हैं सब दुनिया वालों को कि देखो सीता जी ने कितने कठोर वचन लक्ष्मण को सुनाए थे। तब लक्ष्मण को इसने कठोर वचन सुनाए तो सीता जी को भी कठोर वचन सुनने पड़ेंगे। ऐसे कोई आदमी किसी को कठोर वचन बोलेगा तो उसको भी कठोर वचन सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये आये संसार का कायदा है, कोई किसी का तिरस्कार करेगा तो उसका भी तिरस्कार होगा। अमृष्यमाणा सा सीता वचनम राघवोदितम, अवाच्यवादान बहुशः प्राहेताम रघुनंदन। अब ऐसे बोलने लगे तो जो है सीता जी को ये वचन सहन नहीं हुए। राम जी ने ये वचन कहे तब, तब लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम जल्दी से जल्दी आग लगाओ, चिता बनाओ, उसमें आग प्रज्वलित करो, संपूर्ण संसार को विश्वास में लाने के लिए मैं आज अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूं। मैं राघवस्य मतम ज्ञात्वा, लक्ष्मणोपि तदैव ही माया काष्ठ चयम कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम। इतना कहकर के और सीता जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने ऐसा इशारा किया कि लक्ष्मण जी को यहां क्रोध करने का कोई मौका ही नहीं दिया। नहीं तो यहां राम जी पर क्रोध कर सकते थे कि महाराज मैं तो उन वचनों को भूल ही गया, यदि वो वचन मैं याद रखता और आप में मेरा, देखो लक्ष्मण जी कितनी बढ़िया बात बोलते हो, मेरा आप में प्रेम ज्यादा है या सीता के वचनों का कष्ट ज्यादा है। यदि मेरे मन में आपके प्रति प्रेम कम होता और सीता के वचनों का कष्ट ज्यादा होता तो मैं आपके साथ नहीं रहता। मैंने कहता है साहब सीता जी को तो आप ही प्राप्त करो, मैं तो आपके साथ इसलिए नहीं रहूंगा कि सीता का मेरे पर कितना बुरा जो है असर पड़ रहा है, इसलिए मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी के मन में राम जी के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है कि वहां सीता जी के वचनों को वो भूल गए। ऐसे ही सज्जनों, संसार के अंदर अब भगवान में ज्यादा प्रेम रखने से संसार की कटुताएं सब समाप्त हो जाती हैं, इसलिए भगवान में प्रेम रखना चाहिए। राघवस्य मतम ज्ञात्वा, राम का भी मत समझ करके लक्ष्मण जी ने फिर वहां एक बहुत बड़ी चिता बनाई और चिता बना करके और लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास खड़े हो गए। सीता जी ने राम जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की और सब प्राणियों के देखते देखते वहां पर राक्षस देवता बंदर सब थे, सबके सामने उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया और सबको सुनाती सुनाती कहने लगी, देखो मैंने अपने हृदय में सदा ही भगवान राम की उपासना की है, एक क्षण भी मैंने उनको अपने हृदय से अलग नहीं किया है, यदि ये बात सत्य है तो यही अग्नि मेरी रक्षा करेगी। इतना कह करके अग्नि की परिक्रमा करके जलती हुई अग्नि के अंदर निर्भय होकर के सीता उसमें प्रवेश करती है। आजकल के लोग आक्षेप करते हैं कि भगवान को मालूम है कि सीता सर्वथा निर्दुष्टा है तो फिर उसको अग्नि में क्यों प्रवेश करवाया, अग्नि परीक्षा क्यों ली। अरे हमारे ग्रंथों को देखते ही नहीं, कहीं कोई शंका करने की जगह ही नहीं है। भगवान कहते हैं अग्नि में मैंने उसको प्रवेश करवाया है, पहले वो अग्नि में ही है सीता, नहीं क्या परीक्षा ली है? अग्नि में रहने वाली सीता को मैंने अग्नि में से प्राप्त कर लिया, मायामयी सीता थी, उस मायामयी को अग्नि में रख दिया। सीधी सीधी बात है, विवेशे ज्वलनम दीप्तम निर्भये न सदा सती। लोग कहते हैं कि राम जी सर्वज्ञ थे, जानते थे तो ऐसा क्यों किया? और राम जी को समझे न सीता को समझे और न वो ग्रंथ कोई कोई समझे। महाराज जी एक बार सरदार शहर गए थे सत्संग के लिए, वहां पर स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम था। महाराज जी को बड़ा अच्छा लगता था स्कूलों में कार्यक्रम देना, ये बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वहां लड़के लड़कियां कोई प्रश्न करें तो उनको जवाब देवे। तो महाराज जी कहते थे कि प्रश्नोत्तर से बात हृदय में बैठती है। तो किसी ने कह दिया कि महाराज, एक कोई अध्यापिका थी वो खड़ा होकर के कहने लगी, एक प्रश्न पूछना है कि बोलिए, ये रामायण में तुलसीदास जी ने स्त्रियों का बड़ा अपमान किया है। कहा कि बोलो भाई, कहां अपमान किया? कि ये ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो महाराज जी ने कहा कि ये चौपाई कहां आई है? ये तो अयोध्या कांड में आई है। अच्छा, अयोध्या कांड में कहां आई है? जहां स्त्रियों का वर्णन वहां आई है। तो भगवान महाराज जी ने कहा भी लाओ भाई कोई वो रामायण लाओ। तो कोई रामायण ला के दिया कि बताओ इसमें बताओ कहां आई है। तो ऐसा तो हमको याद नहीं है। तो तुमने ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, प्रश्न करने बैठ गए इतने आदमियों के बीच में। अयोध्या कांड में है क्या ये? ये तो सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में भी कहा कौन बोलता है कि समुद्र बोलता है। समुद्र क्या बताना चाहता है? समुद्र तो अपनी अपनी कमी, अपनी तुच्छता, भगवान के सामने अपनी तुच्छता बता रहा है। तो इसमें सकल ताड़ना के अधिकारी कहकर के स्त्री का सम्मान किया है कि स्त्री का जो है यहां पर कोई निंदा की है? सम्मान किया है। ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षित करना, मारना थोड़ा ही होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको शिक्षित करना चाहिए। यदि इनको शिक्षित नहीं करते हैं तो इसका दोष शिक्षा देने वाले में है, उसमें दोष नहीं है। अब ये सूरदास जी बजाते हैं बाजा और इनके साथ ये तबला बजाते हैं, स्वर मिलाते हैं पहले दोनों, ये कायदे से ही बजते हैं, ऐसा थोड़ी बजते हैं। ऐसे चाहे जाए तो ये अंगुली नहीं रख सकते और चाहे जाए ऐसे ये बिना ठेका के बजा नहीं सकते। बिल्कुल कायदे से चलता है, स्वर मिलाना पड़ता है और इनका स्वर उतारना पड़ता है ढोलक का। जब ढोलक काम में नहीं लेनी है तो उसका तनाव खत्म करना पड़ता है ताकि ठीक रहे, और फिर जो है उसका तानना पड़ता है और मिलाना पड़ता है यूं ऐसे करके, और इसका स्वर से स्वर मिलाना पड़ता है। और यदि ठीक नहीं मिलाएंगे तो ढोलक वालों कहेंगे भाई तेरी ढोलक ठीक नहीं बज रही है, क्या बात है? तो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, गांवों के अंदर खेतों में किसी की गाय किसी खेत में चली जाए तो लोग कहते हैं भी तुम्हारी गाय हमारे यहाँ क्यों आई? लड़ाई होती थी उस आदमी से कि अपने पशु को तुम अपने घर में रखो या कोई व्यवस्था करो, हमारे खेत में क्यों आया भाई? गाय को कोई नहीं कहते हैं, ज्यादा ज्यादा गाय को ताड़ देवे, गाय को अलग कर देवे, लेकिन उपालंब उस पुरुष को दिया जाता है। ऐसे यदि स्त्री के अंदर कोई कमी रहती है तो उसका दोष पुरुष को लगता है। यदि छोटी अवस्था में कोई गलती होती है तो माता पिता को लोग कहेंगे, और बड़ी होने पर यदि होएगा तो उसको उसको कहेंगे जो उसके पति है उसको कहेंगे, बूढ़ी होने पर होगा तो लड़कों को कहेंगे तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो। स्त्री पर कोई जो है किसी प्रकार से कमी नहीं बता सकते, सम्मान किया है, निरादर कहाँ किया है? और अयोध्या कांड में कहा है ऐसे ही साथ सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? सर्वज्ञ भगवान है, अग्नि परीक्षा किस लिए ली है? किस लिए ली है? उस अग्नि से सीता जी जली है क्या? सीता जी को पीड़ा हुई है क्या? सीता जी को तकलीफ हुई है क्या? कुछ नहीं हुआ। अपनी असली सीता को अग्नि में से ही लेना था और मायामयी सीता को अग्नि में ही रखना था, ठीक है। दृष्ट्वा ततो भूत गणा सिद्धा सीताम सवन्निगताम भृशार्ता परस्परम प्राहुरहस सीताम रामे श्रीयम स्वाम कथम अत्यज्ञ है। देखो देखो राम जी महाराज ने कैसा किया, कैसा किया है। भगवान शंकर कहते हैं उस समय सब देवता आ गए। देवता आकर के भगवान से कहने लगे, महाराज आप तो आप ही हो, आप ही संसार के कर्ता हो, साक्षी हो, सब लोगों का निर्माण करने वाले हो, माया से आप छिपे हुए हो, तरह तरह की लीला करते हो, और जो आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं वे लोग आपकी लीला के रहस्य में प्रवेश करते रहते हैं। देखो कोई हॉल हो कोई ऐसा, अपने तो यहाँ सत्संग है भाई, कोई और कोई समारोह होता तो टिकट ले आओ, वे टिकट ले आओ, सिनेमा के हॉल में जाते हैं तो टिकट ले आओ, क्रिकेट देखने जाओ तो टिकट ले आओ, ऐसे ही भगवान के लीला राज्य में प्रवेश करो तो टिकट ले आओ। एक काय का टिकट ले आओ साहब, एक तो मुंह में राम राम होना चाहिए और कानों के अंदर आपकी कथा सुनी हुई होनी चाहिए, टिकट है टिकट। तो त्वं नाम स्मरताम राम, आपका नाम जो स्मरण करते रहते हैं वो आपके लीला राज्य में प्रवेश करके लीला का रहस्य समझ लेते हैं, नहीं तो ऊट पटांग बातें करते हैं कि सर्वज्ञ राम ने सीता जी की क्यों परीक्षा ली, राम जानते थे तब। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मेरे द्वारा बड़ी गलतियां हुई, कैसे कैसे मैंने वरदान दे दिए और फिर उसके बाद मैंने आपसे प्रार्थना की, आप पधारे, आपको कितना कष्ट हुआ महाराज, आप अशेष स्थितियों के हेतु हैं, आप अध्यात्म स्वरूप हैं, भाव अभाव से रहित हैं, मान बड़ाई आदि से अतीत हैं, प्रमाण आदियों से भी आप अतीत हैं, सबसे आप अतीत हैं, आप मथुरा के स्वामी हैं। अब आप लोग चौंक गए होंगे एकदम, मथुरा के स्वामी तो कृष्ण भगवान थे, राम जी को यहां मथुरेश कैसे कह दिया, वंदे रामम मरकतवणम मथुरेशम, तो मथुरा का स्वामी इसलिए बताया है कि कृष्णावतार के बाद रामावतार हुआ है और रामावतार के बाद कृष्णावतार हुआ है, ये गोड़ाई होने गोड़ाई हो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये गोड़ाई होती है। गोड़ाई के अंदर पहला कौन सा आता है बताओ, देखे क्या बताए, सतयुग आया फिर त्रेता आया फिर द्वापर आया फिर कली आया फिर सतयुग आया फिर त्रेता आया, तो ये ब्रह्मा जी का कहने का अर्थ क्या है, आपकी लीलाएं हर त्रेता में होती रहती है, तो हर द्वापर के अंदर कृष्ण लीला भी होती रहती है, कृष्ण भी आप ही होते हो। यहाँ लिखा है कि वृंदावन में अनेक देवताओं के द्वारा आपकी पूजा होती है, वृंदारण्य वंदित वृंदारक वृंदम, वृंदारक वृंद माने ऋषि मुनि देवता इत्यादियों के द्वारा आपकी वृंदावन में पूजा होती रहती है। तो वृंदावन में तो राम जी की पूजा कैसे होगी, तो ये राम जी ही द्वापर में बने और वो कृष्ण ही आगे आने वाले त्रेता में राम जी बने, क्योंकि हर त्रेता में राम जी होते हैं, इसलिए मथुरेश शब्द कहा। फिर उसके बाद देव इतने में ही क्या हुआ कि अग्नि उसमें से प्रकट हुई, साक्षात अग्नि सीता जी को गोद में लेकर के प्रकट हो गई और राम जी से निवेदन किया कि महाराज इस सीता जी को पहले तो जनक जी ने आपको दिया और अब आज रावण के युद्ध के बाद हम लोग बधाई के अंदर आपकी वास्तविक सीता को हम अर्पित करते हैं। गृहाण देवीम रघुनाथ जानकीम पुरा त्वया मई अवरूपिताम वने, जंगल में आपने हमको दिया अब हमने आपको दे दिया, अब आप इसको जो है अपने पास में रखिए, परम शुद्ध है परम पवित्र है, इस बात को आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर जो है इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई कि महाराज आप जो है नील कमल की आभा वाले हो और सबके हृदय में रहने वाले हो, भवानी के हृदय में जो है आप विराजमान रहते हो, जो आदमी भोगों में रहने वाले हैं उनसे आप बहुत दूर रहते हो। लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, कौन आदमी बोलते हैं जो कोई भजन नहीं करते, उनकी बात है, भजन करते नहीं, सत्संग करते नहीं, शास्त्र की बात मानते नहीं, कथा सुनते नहीं, भगवान का नाम लेते नहीं, वो कहते हैं भाई भगवान की भक्ति वक्ति नहीं होती, होती नहीं है। सेठ जी ने एक बार कुछ मछली पकड़ने वाले लोग थे उनको बुला करके कहा तुम मछली पकड़ते हो सारे दिन में कितना रुपया मिल कर लेते हो, उस जमाने में उन्होंने बताया हम रोज 5 रुपया कर लेते हैं। 5 रुपया कर लेते हो कि हाँ, कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ तुम। तुमको जो है हम राम 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 करो सारे दिन 8 घंटा 9 घंटा राम राम करो, हम तुमको कुछ चावल भी दे देंगे खाने के लिए और 5 रुपया दे देंगे, फिर तो नहीं मारोगे मछली, हमको चावल भी मिल जाएगा, फिर हम क्यों करें आगे बैठे। एक दिन तो राम 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 किया हो के हमारा समय निकलना, वो 5 रुपया चावल दे दिया, दूसरे दिन वो आए ही नहीं और वापिस वहीं गए वही मारने के लिए, मछली मारने के लिए। वहां पर लोग गए, अरे भाई तुमको 5 रुपया और चावल मिल रहा था, तुमने कहा कि हम अरे क्या करें, हमारा वहां समय नहीं निकलता, समय पास नहीं, हम तो घबरा गए। हमको तो ये अच्छा, हमें नहीं चाहिए आपके 5 रुपये चावल दिए, यही ठीक है हमारा। तो सदा भोग भाजाम सुदूरे विभांतम, सदा योग भाजा मदूरे विभांतम, चिदानंद कन्नम सदा राघवेशम, विदेहात्मजानंद रूपम प्रपद्ये। योगियों के पास तो सदा आप नजदीक से नजदीक देखते हो, वो कहते हैं भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भोगी लोग कहते हैं कि भगवान नाम की कौन चीज है, भगवान है क्या, किसने देखा बताओ, भगवान है कौन, कौन कह सकता है मैंने भगवान को देखा, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कुछ है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको मानते हैं देखो। और जो ये संसार प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं ये तो झूठा है, और जो दिखता ही नहीं उसको कहते हैं कि साहब भगवान लाओ, कहां से भगवान। तो भाई भोगियों के लिए बहुत दूर है, योगियों के लिए भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। बस महाराज आपकी कृपा से मेरा त्रिलोक पने का अभिमान था वो नष्ट हो गया, क्यों, ये रावण हमको कई बार जो है जकड़ लेता था और इसका बेटा हमको कैद खाने में पटक दिया, और हम समझते थे कि जाने हम क्या है। तो महाराज एक तो इनको आपने इतनी शक्ति दी कि मेरे को भी कैद खाने में डाल दिया, और अब आपने इनको मारा तो अब हमारा अभिमान नष्ट हो गया। अब बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। इतने में ही देखो, अभी तो ये सेवा लिए आज तो बात दूर रही, इतने में ही भगवान शंकर एक विमान पर बैठ करके पार्वती के साथ आए, और फिर जो है भगवान शंकर ने कहा महाराज मैं अभी तो आपके दर्शन करता हूं, सबके साथ हूं, इसलिए आपसे प्राइवेट मुलाकात करूंगा बाद में। कब कि करेंगे हम, जब आपका राज्याभिषेक होगा तब आएंगे, अभी तो आप अपने पिताजी से मिलिए। आप पिताजी को देखा, पिताजी विमान में बैठे हुए थे, पिताजी को प्रणाम किया। दशरथ जी महाराज ने राम को अपने छाती से लगाया कि बेटा तारितोस्मि त्वयावत से, तेरे आचरणों से मैं तर गया। जब हम ऊपर के लोक में तुम्हारी बातें सुनते थे हम गदगद हो जाते थे। देवराज इंद्र से राम जी ने कहा कि देवराज इंद्र तुमने कहा ना कि हमको कोई सेवा बताओ, तो सेवा यह है कि तुम अमृत की वर्षा करो, हमारे ये सब बंदर जीवित हो जाए। तो अमृत की वर्षा की तो भाई ये बंदर जीवित हो गए जो मर गए थे। राक्षस क्यों नहीं हुए, क्या राक्षस इसलिए नहीं हुए कि नोथिता राक्षसा, क्योंकि राक्षस तो राम जी का दर्शन करते करते मरे ना, इस कारण से वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, इसलिए वे अमृत की वर्षा से जीवित नहीं हुए। इधर विभीषण जी महाराज ने कहा महाराज आप मंगल स्नान कीजिए और फिर जो है आप सीता जी के साथ कल चलिए, आज आप यही विश्राम कीजिए। भगवान ने कहा कि देखो विभीषण जी, मेरा भाई भरत बहुत दुखी अवस्था में समय निकाल रहा है, मैं यहां मंगल स्नान करने बैठूंगा, श्रृंगार करने बैठूंगा, जब तक मेरा भरत है वो भरत से मैं न मिल लूं। मैंने सुना है वो जटावलकल वस्त्र धारण कर किया हुआ बैठा हुआ है, वो मंगल स्नान नहीं करे उससे पहले मैं कैसे मंगल स्नान करूं। शब्द ब्रह्म समाहित है, ध्यान से सुनना, वो मेरे नाम के अंदर लगा हुआ, नाम क्या है, ये साक्षात ब्रह्म रूप है, शब्द की आकृति में ब्रह्म है। राम 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 लोग कहते हैं, मैं तो कोरो राम राम करा और तो कहीं हुआ को नहीं, शास्त्र कहवा है कि कोरो नहीं हो, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, शब्द के रूप में साक्षात भगवान ही है वो राम राम। राम राम करे और कह माने भगवान मिलिया को नहीं, अचंबा की बात है। पानी में डूबेड़ो आदमी कहवे पानी कठे है, पानी का ही चीज है भाई, अरे तू है ना हो तो पानी कठे है, बताओ पानी बताओ। ऐसे ही भगवान का नाम ले रहा है और क्या भगवान क्या होता है, अरे यही भगवान है, यही भगवान। क्या पता कि राम 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 करते रहने से आनंदानुभूति होती है और जड़ चेतन का ज्ञान होता है और संसार की विनाशिता का ज्ञान होता है, भगवान की सत्ता का बोध होता है। तो सत चित्र और आनंद तीनों चीज राम नाम के अंदर विराजमान है, अतएव ये साक्षात शब्द ब्रह्म है। फिर जो है हम तो भाई उनके वहां जाएंगे अयोध्या। पुष्पक विमान को कहा कि भाई पुष्पक विमान, विभीषण से कहा विभीषण पुष्पक विमान लाओ। पुष्पक विमान में बैठ गए भगवान। सब बंदरों से कहने लगे कि देखो सुग्रीव जी, आराम से भाई आप प्रवर्षण पर्वत से हम आलोग आए थे, आप लोग किष्किंधा जाओ, अपना राज्य संभालो, आपने हमारा मित्र कार्य किया, तुमको अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, मैं अयोध्या जाता हूं। सब बंदरों ने कहा महाराज हमारी एक इच्छा है, प्रार्थना है, सुनो। सुनाओ क्या बात है? हम भी अयोध्या चलना चाहते हैं, तो आ जाओ। पुष्प विमान ऐसा था जितने ही बैठो उतना पुष्प विमान ही हो जाए, डब्बू की तरह से वो फैलता रहता था, जितने बैठो उतने फैल, जितने बैठो उतने बैठ जाओ। आप पुष्प विमान के अंदर कोई बैठ गए, कोई लटक गए, कोई क्या ऐसे, कोई उड़ते हैं, पकड़ते हैं, चलते हैं, ऐसे सब पुष्प विमान के अंदर आरूढ़ होकर के रवाना हुए। सीता जी की शोभा बड़ी निराली। राम जी सीता जी को प्रसन्न करते हुए बोलते हैं, देखो ये लंका है, देखो तुम तो इतने दिन तक अशोक वाटिका के नीचे रही ना, अभी देखो पूरी लंका को देखो, ये देखो समुद्र है, हाँ लंका के लिए ये रणांगण है, यहाँ देखो रावण को मारा, यहाँ कुंभकर्ण को मारा, यहाँ मेघनाद मारा गया, ये देखो ये समुद्र है, ये सेतुबंध है, ये रामेश्वर है, और यहाँ विभीषण जी आए थे अपने मंत्रियों के साथ में, मेरे शरण में आए थे, और इस मार्ग से हम गए थे, आए थे प्रश्रवण पर्वत, ये देखो ये किष्किंधा नगरी आई। किष्किंधा नगरी आते ही सीता जी ने कहा महाराज बोलो, ये सब बंदर आपकी सेवा में रहे, यहां रहे तो महाराज अयोध्या में इनका परिवार भी चलेगा, चलो। सब बंदरों को कह दिया कि ले आओ अपनी अपनी बंदरियां, ले आओ चलो सब। तारा प्रमुखा हरि योषिता है, सब बंदरियां भी साथ में हो गई। सुग्रीव जी महाराज सब आप परिवार सहित आ गए, और उसके बाद चलते चलते वो ऋषिमुख पर्वत आया। कहा कि देखो यहां हमने बाली को मारा, बाली को यहां मारा है, ये देखो ये पंचवटी की जगह आई, यहीं से राक्षस तुमको ले गया था। सीता जी की आंखें डबडब आ गई, क्या हुआ सीते? बस वो दृश्य याद आ गया, और ये देखो ये अगस्त ऋषि का आश्रम, ये सुतीक्ष्ण जी का आश्रम, कितने अच्छे अच्छे, ये देखो ये चित्रकूट है, चित्रकूट में देखो यहाँ भरत आए थे, कैसे प्रेम से मिले थे, ये देखो अब भरद्वाज ऋषि का आश्रम आ गया, वो देखो वो सरयू नदी है, सरयू नदी के पास वो अपनी अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को प्रणाम करो। सीता जी ने प्रणाम किया और कहा कि आज रात अपने लोग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ही निवास करेंगे, आज 14वें वर्ष की समाप्ति पर पंचमी तिथि है, अतएव कल 14वें, आज समाप्त होगा 14वां वर्ष, कल अपने को अयोध्या पहुंचना है, रात्रि में भरद्वाज ऋषि के यही विश्राम करेंगे। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां, राम राघव राम